بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہندوستان، پاکستان اور عراق میں 28 صفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہم گفتگو کریں گے شام کے بحران کے تناظر میں، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز۔ ناظرین، شام میں مغرب اور علاقے کی رجت پسند حکومتوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوج کا ملک گیر آپریشن جاری ہے، جس میں فوج کو مسلسل کامیابی مل رہی ہے اور کئی علاقے دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد ہو چکے ہیں۔ آج بھی متعدد اہم علاقوں کے دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد ہونے کی خبر ملی ہے۔ داخلی محاذ پر دہشت گردوں کے خلاف کامیابیوں کے ساتھ ہی شام کی حکومت کو سیاسی محاذ پر بھی نمایاں کامیابی ملی ہے، اور وہ طاقتیں جو کل تک دہشت گرد گروہوں کی مدد کر کے اور فوجی کارروائی کے ذریعے دمشق حکومت کو گرانے پر مصر تھیں، اب یہ اعتراف کرنے لگی ہیں کہ شام کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور اس کو صرف سیاسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ملکوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شام میں القاعدہ اور اس سے وابستہ دہشت گرد گروہ جنگ میں مصروف ہیں، جو کل کو خود مغرب کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، اور شام سے واپس آنے کے بعد مغربی ملکوں میں بھی دہشت گردی کا بازار گرم کر سکتے ہیں۔ مغرب نے اسی کے ساتھ ان دہشت گردوں کی حمایت اور سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شام میں دہشت گردوں کی دامے درمے ہر طرح سے مدد کرنے والی خطے کی رجت پسند حکومتوں نے بھی شام کی حکومت کے مستحکم ہونے کا اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے۔ ترکی کی حکومت نے بھی شام میں سرگرم انتہا پسند دہشت گرد گروہوں سے خطرہ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے مسائل میں الجھ چکی ہے اور مغربی ملکوں، خاص طور پر امریکہ پر انقرہ کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگا رہی ہے، جبکہ اسی امریکہ کے کہنے پر اس نے شام میں دہشت گردوں کو سہولتیں فراہم کی تھیں، ان کے لیے اسلحے کی سپلائی کے راستے کھولے تھے اور اپنی حدود میں دہشت گردوں کے لیے ٹریننگ کیمپ قائم کیے تھے۔ اردن نے بھی پناہ مانگنی شروع کر دی ہے، اگرچہ اس کی سرحدوں سے اب بھی دہشت گردوں کے آنے کی خبریں مل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کے بعد دہشت گردوں کے دوسرے سب سے بڑے علاقائی حامی قطر نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ شام کی حکومت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ دہشت گردوں کے ذریعے اس کو گرانا ناممکن ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد نے ابھی 2 دن پہلے ایک بیان میں شام کے بحران کے پرامن سیاسی حل پر زور دیا ہے۔ لے دے کے سعودی حکومت بچتی ہے جو اب بھی شام میں سرگرم دہشت گردوں کی مدد پر مصر ہے، اور سعودی انٹیلیجنس چیف بندر بن سلطان ہر طرح سے دہشت گردوں کی مالی مدد اور اسلحہ پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے اندرونی محاذ پر دہشت گرد گروہوں کے خلاف شام کی فوج کی کامیابیوں کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر شام کی سیاسی پوزیشن پر گفتگو ہوگی۔ اس درمیان علاقے کی رجت پسند حکومتوں کا کردار بھی زیر بحث آئے گا، خاص طور پر آج کے پروگرام میں ہم ترک حکومت کے کردار اور سعودی حکومت کی فتنہ انگیزی پر گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے دہلی اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی، لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں شرکت کریں گے بر صغیر کے معروف تجزیہ نگار شبیر رضوی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر فاروق حسنات کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
شام میں فوج کی مسلسل کامیابیاں جاری ہیں، اور خبروں کے مطابق شام کی فوج نے جنوبی شام میں واقع علاقے جربہ سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے۔ اس مہم کے دوران کئی دہشت گرد گرفتار بھی ہوئے ہیں، جبکہ شام کے دوسرے علاقے دوما میں بھی شامی فوجیوں نے جیش الاسلام نامی دہشت گرد گروہ کے کئی خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں اس دہشت گرد گروہ کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ شامی فوج نے اسی طرح الجفرہ اور دیر الزور سے بھی دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے۔ شام میں فوج کی مسلسل کامیابیوں کے ساتھ ہی ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں جن سے شام میں حکومت مخالفوں کے موقف میں تبدیلی کا اندیا ملتا ہے، اور یہ تبدیلی ایسی ہے کہ اسے سیاسی حلقے مخالفین کی ناکامی کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ شام میں حکومت مخالف دھڑوں کی بدہواسی اور بوکھلاہٹ کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے گروہ اب بھی جنیوا 2 اجلاس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ دراصل شام مخالف گروہوں میں باہمی اختلافات اور القاعدہ کی موجودگی سے بھی شام میں بشار اسد کے مخالف محاذ کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ان کے زوال کا عمل تیز ہو گیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ بشار اسد کی حکومت کے مضبوط ہونے کا اعتراف مخالف محاذ کے لوگ بھی کرنے لگے ہیں۔ اسی سلسلے میں امیر قطر کے اس بیان کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بشار اسد طاقتور صدر ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد نے کہا ہے کہ جنیوا 2 اجلاس میں تمام فریقوں کی شرکت ضروری ہے، کیونکہ شامی حکومت کے خاتمے کا دور گزر چکا ہے۔ دراصل شام کے وزیراعظم وائل الحلقی نے اپنے ملک کے اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات کے دوران کہا کہ روس اور ایران کے ساتھ شام کا تعاون بڑے اچھے نتائج کا حامل رہا ہے، اور ان کا سلسلہ جنیوا 2 بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کے دوران بھی جاری رہے گا۔ وائل الحلقی نے کہا کہ اگر یہ ہم آہنگی نہ ہوتی اور چین اور روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کا حق استعمال نہ کرتے تو آج شام کے حالات مختلف ہوتے اور شام پر زیادہ دباؤ ڈالا جاتا۔ شام کے وزیر اعظم نے اس بات پر پھر زور دیا کہ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ شام کا وفد اقتدار دوسروں کے سپرد کرنے کے لیے جنیوا 2 کانفرنس میں شرکت کرے گا تو وہ وہم کا شکار ہے۔ شام کے وزیر اعظم نے جن اچھے نتائج کے سمت اشارہ کیا ہے وہی نتائج شام مخالف محاذ کی تشویش کا باعث ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جنیوا 2 اجلاس میں اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت شامی دہشت گردوں کے حامیوں نے سازشوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ شام میں دہشت گردوں کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کا دور گزر چکا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بجھتے چراغ کی بھڑکتی لو ہے۔
ناظرین، شام کے تعلق سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، تو چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار شبیر رضوی صاحب موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ رضوی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، پہلے تو آپ کے ناظرین کو تعزیت وفات رسول خدا پر اور نئے سال کی آمد پر، کہ خداوند کریم مسلمانوں کو اور جو مسلمان کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود کر انشاءاللہ۔
جی شکریہ رضوی صاحب۔ رضوی صاحب، شام کے بحران کے تعلق سے اندرونی محاذ پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے، آپ کی رپورٹ نے اچھی طرح اور بہت یعنی کہ خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے پچھلے 3-4 مہینے میں، یقین یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت ختم نہیں ہونے والی ہے۔ نہ صرف کہ ختم نہیں ہونے والی ہے، کافی مضبوط ہو گئی ہے اس وقت، کیونکہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک نے حتیٰ اتنی کوشش کی کہ ہر قسم کے وہاں پر دہشت گردوں کو دنیا بھر سے بھیجا گیا۔ ایک ابھی ریسنٹ رپورٹ 29 دسمبر یہاں لندن کے نیوز پیپر انڈیپینڈنٹ میں پبلش ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک یہاں پر انٹرنیشنل سینٹر فار دا اسٹڈی آف ریڈیکلائزیشن ہے، جس میں جو ہے رپورٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو سوئیسائڈ بومبنگ میں انوالو رہے ہیں سیریا میں اس وقت 267 سعودی نیشنلز تھے، 201 لیبین نیشنلز تھے، 182 ٹینیوزینز اور 95 جورڈینینز۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ نمبر دہشت گردوں کا سعودی سے آ رہا ہے، اور وہ حتمن یہ کوشش کر رہے ہیں پیسے پھینک کر وہاں کے سعودی نیشنلز کو سیریا میں بھیج کر اور آس پاس کے ملکوں میں دہشت گردی کرنی۔ سعودی کے سیریا کے تعلق سے پچھلے 2-2.5-3 سال سے ہر قسم کی کوشش کر لی انہوں نے، انٹرنیشنل پاور، یورپین پاورز، ملٹری پاور، دھمکی دینے کا طریقہ کہ ایریل بومنگ کی جائے گی، مگر کیونکہ اس وقت جو رشیا اور ایران نے جس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، اس بنا پر ये बिल्कुल वाजे दिखाई दे रहा है कि सीरिया की हुकूमत सलामत रहेगी और इस वक्त जो है सऊदी हुकूमत का और सऊदी मोनकी का साफ यानी कि दिखाई दे रहा है कि ये दहशतगर्दों की पसपनाई करते हैं और हमेशा इनको सपोर्ट किया इन्होंने, ना सिर्फ सीरिया में मगर यकीनी तौर पर हर एक को पता है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जो डेवलप हुई पिछले 30 साल पहले, वहाँ पर भी सऊदी का हाथ था। हर जगह जहाँ पर भी दहशतगर्दी दिखाई देती है, सऊदी अरब जो है अपने पैसे से, अपने ताल्लुकात यूरोपियन ममालिक और अमेरिका के साथ होने की बिना पर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये पता चल रहा है कि अवामी मुस्लिम ममालिक को और मुस्लिम लोग जो हैं उन्हें यह पता चल रहा है कि सऊदी जो है इस्लाम और मुसलमान के मफाद में कभी काम नहीं करता है, ना करता था और ना कभी करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार मोहम्मद अहमद काज़मी साहब मौजूद हैं। काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी काज़मी साहब, शाम में दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ
जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको,
फौज की मुसलसल कामयाबी के बारे में आपका तज़िया क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से शाम की हुकूमत के फौजियों को कामयाबी मिल रही है वो एक मुसलसल कोशिश का नतीजा है और ये कोई इत्तफाक नहीं है। मैंने खुद बहरान के शुरुआती दौर में और उसके बाद फरवरी 2012 में भी शाम का खुद तज़िया किया है, जायज़ा लिया है ज़ाती तौर पर सफ़र करके। वहाँ अवामी तौर पर हुकूमत को जो सपोर्ट है, जो हिमायत है, वो बाकायदा मजबूत है। गैर मुल्की अनासिर जो जैसा कि हमारे दूसरे साथियों ने भी बताया, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक के जो अनासिर हैं वो वहाँ दहशत गर्दी में मुलविस शुरू से रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शाम ने कीमियावी हथियारों को ख़त्म करने के लिए जो मुआहदा किया उस पर अमल कर रहा है वो, और जिस तरह से बैनुल अक्वामी सतह पर उसने सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं जिसमें चीन, रूस और ईरान ने उसका बहुत अच्छी तरह से साथ दिया है और हकीकत पसंदी का काम किया है, उससे शाम की हुकूमत को और मजबूती मिली और उस मजबूती के नतीजे में और अवामी हिमायत के नतीजे में वहाँ की फौज काफ़ी हद तक कामयाबियों की तरफ बढ़ रही है। और जिस तरह से ताज़ा खबरें आ रही हैं, शाम की हुकूमत ने कई और एहतियाती इकदाम भी किए हैं जिसमें सऊदी अरब की किसी भी किस्म के वहीकल, ट्रक या बसें या कारें वगैरह मुल्क के अंदर दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। कल ही उस पर एक बाकायदा ऐलान आया है। तो मैं समझता हूं कि अगर सऊदी अरब की तरफ से जो सरहद है उस पर मजबूती से रोक लगाने में वो कामयाब हो गए, और लेबनान और तुर्की की तरफ से भी अंदेशा जाहिर किया गया था कि वहां से भी दहशतगर्द मुल्क में दाखिल होते हैं, तो मैं समझता हूं कि अंदरूनी फौजी कार्रवाई और सरहदों पर बेहतर निगरानी से वो और कामयाबियां हासिल करेंगे।
जी शुक्रिया जनाब। रिजवी साहब, जनाब अंदरूनी महाज पर दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ फौज की मुसलसल कामयाबी के सियासी महाज पर क्या असरात मुरतब होंगे?
सियासी यानी कि एक तो लोकल रीजन पर उसका असर पड़ा है। आप देखें कि सरहद जहां तक ताल्लुक है इराक से दहशतगर्दी के वो पब्लिक और वो दहशतगर्द इराक से भी काफ़ी दाखिल हो रहे हैं, और आपको अच्छी तरह इल्म है कि गुज़िश्ता महीने तकरीबन 800 जो जव्वार इराक गए हुए थे उनको शहीद किया गया है इराक में, और ये जो अल-नुसरा और सलफ़ी और वहाबी ग्रुप्स हैं वो ये चाहते हैं कि इराक और सीरिया एक यानी कि फंडामेंटलिस्ट वहाबी टाइप रेजिम वहाँ पर कायम की जाए। तो ये एक और डर है, यानी कि बराबर के मुल्कों से जो दहशतगर्द आ रहे हैं। और यकीन तो ये आ रहा है बड़ी आसानी से कि ये इस तरह के दहशतगर्द और सलाफी ग्रुप्स जो है वो बगदाद से लेकर बेरूत तक इतना फिशार पैदा करना चाहते हैं कि हर मुल्क में किसी ना किसी तरह की जंग हो, सेक्टेरियन किस्म के इश्यूज सामने आए और शिया और सुन्नी का फिसाद वहाँ पर हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये दिखाई दे रहा है कि आम तौर पर चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, वो इस इंतहा पसंदों को सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, उनकी हुकूमतें चाहे वो सऊदी मोनक्स हों या कुवैत के रूलर्स हों या बहरीन के रूलर्स हों, वो यकीनी तौर पर उन्हें पता है कि अगर ये हवा चलती है जहाँ पर मुसलमान पब्लिक अपने यानी कि अपनी यानी कि विशेस अपने जो वो चाहते हैं उस तरह की हुकूमत लाएं, तो इनका तख्ता उलट जाएगा। इसी बिना पर वो शिद्दत से चाह रहे हैं कि सीरिया की सिचुएशन में खराबी करें, सीरिया की सिचुएशन को और ख़राब करने की कोशिश करें। मगर दिखाई जैसे दे रहा है, हमारे ब्रदर ने जैसे दिल्ली से फरमाया कि यकीनी तौर पर वहाँ पर हुकूमत जो है कामयाब हो रही है और कामयाब होती जाएगी। इसकी बिना पर आप देखते हैं कि अभी जो है बेरूत में जो वहाँ पर बॉम्बिंग हुई थी और वहाँ पर जो एक मिनिस्टर को जो है कत्ल कर दिया गया, उसका जो है इल्ज़ाम जो है हिजबुल्ला पर लगाया जा रहा है। मगर यकीनी तौर पर हिजबुल्ला उस पर इल्ज़ाम लगाना जो है मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो सिचुएशन जैसे मैंने कहा कि इस तरह से बनाई जा रही है कि बगदाद से लेकर बेरूत तक एक फिशार बरपा होता जाए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा राबता बरकरार हुआ है टेलीफोन लाइन के ज़रिए पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर फारूक हसना साहब से। जी फारूक हसना साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब, शाम के बहरान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। शाम में इस वक्त जो अंदरूनी महाज पर तब्दीलियां आ रही हैं और बैन अलाक़वामी सतह पर सियासी महाज पर जो शाम के बारे में मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है, ख़ास तौर पर अमरीका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के मौक़िफ़ में जो तब्दीली आई है कि इससे पहले वो इस बात पर मुसिर थे कि ताकत के ज़ोर से फौजी कार्रवाई के ज़रिए से दहशतगर्द गुरोहों की मदद करके दमिश्क की हुकूमत को गिराएंगे, लेकिन अब वो सियासी हल की बात कर रहे हैं। तो ये जो तब्दीली है इसके बारे में आपका तज़िया क्या है?
ये मैं बिल्कुल, आपने जो शुरू में कहा बजा कहा कि तब्दीली आई है रवैयों में, और रवैयों में इसकी तब्दीली आई है कि जो ज़मीनी हकायक हैं वो भी बहुत तब्दील हो गए हैं। क्योंकि जब ये शुरू हुआ था मामला, यानी जिसको अरब स्प्रिंग हम कहते हैं, और शाम भी उसका हिस्सा बना, और वहाँ के लोगों ने एक चाहा कि कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए शाम में भी जिसमें लोग तमाम शामिल हो सकें और ऐसे अदारे भी बनाए जाए, मंतखब अदारे, तो वो बज़ाहिरन तो शुरू में तो लग रहा था कि ये एरो स्प्रिंग का हिस्सा है जिसमें लोग रिफॉर्म्स मांग रहे हैं, अपने हकूक मांग रहे हैं। लेकिन जैसे आगे मामलात बढ़े तो उसमें जो इराक से धकेले गए थे या वहां पे उनको दबा दिया गया था, अलकायदा के ग्रुप और इस किस्म के जो एक्सट्रीमिस्ट सरती हैं जिनको हम कहते हैं, ये इस पूरी जो जद्दोजहद थी शाम के लोगों भी उसमें शामिल हो गए, ना शामिल हो गए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि ये ज्यादा मुनज़्ज़म हैं और इनके बैन अल-अक़वामी भी लिंक्स हैं, ये ज्यादा मजबूत भी हो गए और ज्यादा डोमिनेंट भी हो गए। और जो कोलिशन हुकूमत बनाई गई पहले इन एक्साइल तुर्की में, वो बिल्कुल इरेलीवेंट होती चली गई, चूंकि असल जो कंट्रोल है वो इन्हीं लोगों ने संभाल लिया। इसलिए हम देखते हैं कि हमें याद है कि अमेरिका बिल ने तहिया किया हुआ था कि वो शाम के ऊपर हमला करेंगे, और सिलसिले में उन्होंने अपने अमेरिका के अंदर भी रायामा को तैयार कर लिया था और जो अपने यूरोपियन इत्तेहादी हैं उनको भी तैयार कर लिया था। लेकिन जब चीज़ें इतनी तेजी से तब्दील हो रही थी, जब उनका जायजा लिया गया तो ये नजर आया कि अगर शाम की हुकूमत को आप गिरा भी दें तो उसकी उसकी जगह कौन लेगा? उसकी जगह अलकायदा वाले लोग लेंगे या सलफी लेंगे, जिनको जिनको बिल्कुल एक आइसोलेशन में जो मुस्लिम दुनिया है वो देखती है, और उनका नजरियात भी उसी तरह के हैं, और इनको सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरब, इनको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान में भी यही खिलाफ करता रहा है, वहां पे भी इनके वो जो ग्रुप्स हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये बाकी खत्ते के मफाद में नहीं था, ना ही अमेरिका के अपने मफाद में था, तो इसलिए उससे तो वो बाज आ गए। और अब बात यही चली कि कोई इस किस्म का कॉम्प्रोमाइज हो जिसमें बशर अल-असद की भी शमूलियत हो, और गिव एंड टेक करके एक इस किस्म का बैलेंस किस्म का निज़ाम आइंदा दिया जाए जिसमें वो खला ना पैदा हो जिससे अलकायदा और जो इतना शिद्दत पसंद है वो लोग हावी हो जाएं या उसमें ये शामिल भी हों। तो ये एक बहुत ही यूनिक, हम कह सकते हैं अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अलहदा सी सूरत हाल हो गई, और वो और सारे रवैये और सारे जो अंदाजे थे वो गलत हो गए शाम के बारे में इन सब के। अब मसला ये है कि ये भी समझती है, शाम की हुकूमत भी समझती है कि इसमें वो एक अहम फरीक बन के सामने आई है जो वो पहले नहीं थे, और उनको भी अब एक कॉम्प्रोमाइज इस किस्म का करना पड़ेगा और उन ग्रोहों के साथ करना पड़ेगा जो शिद्दत पसंद नहीं है, और अपने ढांचों में भी तब्दीली करनी पड़ेगी। तो जहां तक दूसरा मुखालफत का ताल्लुक है वो तो बिल्कुल उनको तो अब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा सवाए सऊदी अरब इनके, और आप देखिए हमने पिछले दिनों में ये भी देखा कि सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में एक तनाव आया, एक तो वो ईरान की वजह से आया। अब देखिए अजीब सी बात है कि आप ईरान से सुलह सफाई की क्यों बात करते हैं, इसलिए हम नाराज हो गए आपसे, ये भी तो बात है, ये तो बैन अल-अक़वामी दुनिया में रहने के तरीके तो नहीं होते। और उससे पहले एक बुनियाद बनी हुई थी नाराजगी की शाम के ऊपर ही, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये हमला, वैसे तो वो कहते हैं कि हम अलकायदा के खिलाफ हैं, और लेकिन हम देखते हैं कि अलकायदा के जो शुरुआत हुई है वो नज्द से हुई है जो कि स्ट्रांग होल्ड है सऊदी हुकूमत का, लेकिन एक तरफ उनकी मुखालफत करते हैं दूसरी तरफ शाम के मामले में उनकी हमायत कर रहे थे, तो अमेरिका से नाराज हुए और फिर वो ईरान के ऊपर आके और ज्यादा नाराज हो गए। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि शाम की सूरत हाल जो आयदा बढ़ेगी वो उस तरह की नहीं होगी जिस तरह के ये मामला शुरू हुए थे, और वहां पे एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आएगा और जिसमें कुछ अदारे बनाने पड़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम कहते हैं मजलिस, इलेक्टेड मजलिस जिस किस्म के चाहे इलेक्शन हो, एक आइन भी देना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल बशर अल-असद जो लग रहे थे हमें चले गए हैं और वो इररेलेवेंट हो गए हैं, वो बहुत रेलिवेंट हो गए हैं अब, क्योंकि उनके बगैर कोई भी फार्मूला आगे अब नहीं चलेगा, और ये सारी जो चीज हुई है वो अलकायदा और शिद्दत पसंद ग्रोह हैं उनके आने की वजह से हुई है जी। तो इसमें एक नया पस मंजर हम देखेंगे पूरे इलाके में जो कि वो पहले अभी बात नहीं होगी
जी। लाइन पर रहिएगा जनाब काजमी साहब। जनाब आप ये देखें कि इससे पहले मगरिब खासतौर पर अमरीका शाम में अलकायदा की मौजूदगी से इनकार करता रहा है, एक से जायद बार अमेरिका का जो सरकारी बयान आया है वाइट हाउस के तर्जुमान ने और अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह कहा है कि दमिश्क और तेहरान का ये कहना बिल्कुल गलत है कि शाम में अलकायदा मौजूद है, बिल्कुल अलकायदा मौजूद नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि शाम में अलकायदा न सिर्फ ये कि मौजूद है बल्कि मजबूत हो रही है, और ये बात मगरिब के लिए ख़तरनाक है। तो अब आप देखें कि अमेरिका और मगरिब ने अब जो एतराफ़ करना शुरू किया है कि अलकायदा वहाँ पर मौजूद है और मजबूत हो रही है, और इससे जो है वो मगरिब की मुस्तकबिल की सलामती को भी ख़तरा लाहिक हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग सरगर्म हैं वो जो यूरोप से वाबस्ता यूरोपीय असरात जो यहाँ पर अलकायदा से वाबस्ता जंग कर रहे हैं वो जब अपने मुल्कों में वापस जाएंगे तो वहाँ भी दहशतगर्दी फैलाएंगे। मेरा सवाल ये है कि अमेरिका और मगरिब वाले क्या वाकई इतने भोले हैं कि उन्हें शुरू में जब वो ये कह रहे थे कि अलकायदा यहाँ पर नहीं है तो उन्हें नहीं पता था कि अलकायदा वाले यहाँ पर मौजूद हैं, और ख़ुद उनके मुल्कों से इंतहा पसंद दहशत गर्द जो अलकायदा से वाबस्ता है वो शाम पहुंच रहे हैं जंग करने के लिए।
जी आपका ये सवाल बहुत ही मुनासिब और उस पर इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। मगरबी मुल्कों ने ख़ासतौर पर अमरीका ने और उसके इत्तहादियों ने दहशतगर्दी को उस वक्त तक पसंद किया है जब वो दूसरे मुल्कों में नुकसान पहुंचाते हैं या आवाम का कत्लो आम करते हैं, जिसमें मैं कई मुल्कों के नाम ले सकता हूं, इराक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और कई मुल्कों में यही या तो बराह रास्त या अपने इत्तहादी सऊदी अरब के ज़रिए वो मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाते रहे हैं और उसको एक तरह से नज़रअंदाज भी करते रहे हैं। शाम में चूंकि उनके प्लान में ये नहीं था कि ये इतने दिन तक चलेगा और इसमें ये जो जिन्हें वो अब अलकायदा के दहशतगर्द तस्लीम करने लगे हैं वो इतने मजबूत हो जाएंगे, उसका उन्हें अंदाज नहीं था। अब जाहिर है इन मुख्तलिफ मुल्कों से, मगरबी मुल्कों से मैंने देखा मीडिया रिपोर्ट्स में कि खुद बरतानिया से और अमेरिका से भी कुछ दहशतगर्द शाम पहुंचे हुए हैं। मुझे इस वक्त एक सऊदी अरब के एक वजीर का वो बयान याद आता है जब इराक में अमरीकी फौजें आ चुकी थीं और उसके तकरीबन एक डेढ़ साल बाद एक सऊदी वजीर ने ये बाकायदा एतराफ़ किया था कि 2500 सऊदी दहशतगर्द इराक में दाखिल हो चुके हैं और जब वो वापस आएंगे तो हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा बनेंगे। तो खुद मगरबी ममालिक और उनके वो इत्तहादी ममालिक जो दहशतगर्दी को फरोग देते रहे हैं दूसरे मुल्कों में, वो खुद जब उन्हें लगता है कि उसकी आग, उसकी लपट उनके मुल्कों पर भी लगेगी तो वो उससे उसके लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है ग्राउंड पर हकीकत में कि कहीं आप खुद जब दहशतगर्दी बढ़ाएं और उनको हिमायत दें और हथियार भी दें और सियासी हिमायत भी दें, उसे मैं सियासी हिमायत ही कहूँगा, एतराब से पहले तक ये सियासी हिमायत ही थी दहशतगर्दों को इन मगरबी ममालिक की तरफ से। तो इस किस्म की हिमायत के बाद जब वो उस ऑपरेशन में जो उन्होंने मकसद तय किया था उसमें जब वो नाकाम हुए तो उसके बाद अब ये एतराफ़ शुरू कर दिया। तो अब समझना यही है कि वो ममालिक जो दूसरे मुल्कों में आग लगाना चाहते हैं, वहाँ की हुकूमतों को किसी भी तरह से डिसमेंटल करना चाहते हैं, वो हुकूमतें ख़ास तौर पर जो हुकूमतें उनकी पसंद की नहीं है, हालांकि खित्ते में दूसरे कई मुल्कों में जहां अवामी तहरीकें मसलन बहरीन और यमन और काफी इलाकों में सऊदी अरब में भी चल रही हैं, वहां उसको नजरअंदाज करते हैं। तो ये इनका हमेशा दोहरा किरदार रहा है और ये दोहरा किरदार अब बैनुल अक्वामी अवाम के सामने है और मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। एक बात और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि अब जबकि चूंकि इसी से मुताल्लिक एक बात है जो मैं बताना चाहता हूं अपने नाजरीन को कि ये जो रूस में अभी दहशतगर्दाना हमले हुए हैं वो उसके पीछे भी सऊदी अरब का हाथ होना उसके इशारे बाकायदा हैं और इसके इस सबूत के तौर पर मैं वो जुलाई में बंदर बिन सुल्तान जो सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ हैं उनकी व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जो आपके यहाँ ओलंपिक गेम होने वाले हैं उनको हम बखैर खूबी होने देंगे और जो चेचन बागी हैं जिनको मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग नाम लेते हैं, तो उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी रूस को कि अगर आप शाम में बशार अल असद हुकूमत की हिमायत बंद नहीं करते तो हम वहाँ दहशतगर्दाना हमले करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त चूंकि रूस में भी ये हमले हो चुके हैं और बैनुल अक्वामी सतह पर सऊदी अरब को अलग थलग करने में निस्बतन आसान हो गया है रास्ता और अब वो शायद बहुत दिन तक بین الاقوامی دباؤ کو برداشت نہیں کر پائے گا اور آخرکار اسے دہشت گردی سے یا تو واپس آنا ہوگا یا پھر اپنے ملک میں اپنے ان ملکوں میں جن کا وہ سردار بنا بیٹھا ہے ان ملکوں میں بھی حالات بدلیں گے اور سیاسی حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور کوئی ایسا لگتا ہے کہ اب سعودی عرب کے کو جس طرح سے تنہا وہ رہ گیا ہے, قطر کی طرف سے بیان آیا, ترکی کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے جو گلف کوآپریشن کونسل خلیجی تعاون کونسل کے ممالک ہیں وہ بھی سعودی عرب کو تنہا چھوڑ دیں گے اور آنے والا وقت شام کی حکومت کے لیے اور خطے کے عوام کے لیے بہتر ہوگا.
بہت بہت شکریہ. جی رضوی صاحب, امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے کھل کے اعتراف کیا ہے, جس میں برطانیہ بھی شامل ہے, کہ شام میں القاعدہ موجود ہے اور انتہا پسند تکفیری گروہ اس سے وابستہ ہیں. خود شام کی حکومت, ایران اور بعض دیگر ممالک شروع سے کہہ رہے تھے کہ شام میں انتہا پسند تکفیری گروہ اور القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد دمشق حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, لیکن امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے. اب جو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شام میں القاعدہ کے دہشت گرد موجود ہیں, تو انہیں اس بات کا ادراک اب ہوا ہے یا حقیقت انہیں پہلے سے معلوم تھی؟
بھائی دیکھیں, حقیقت تو انہیں یقینی طور پر پہلے سے معلوم تھی, مگر اکثر جو ہے واشنگٹن, لندن اور پیرس, یہ تین کیپٹلز جو ہیں, اس طرح کی سچویشن جو ہے عوامی طور پر اور پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, چاہے وہ یوٹیوب ہو, چاہے وہ ٹویٹر ہو یا دوسرے جو انفارمیشن پہنچانے کے ذریعے ہمارے یہاں سامنے, اس کے تھرو اس طرح سے نظریات پیش کرتے ہیں کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو ہمیں نہیں معلوم ہے. مگر کیونکہ ان کی انٹیلیجنس سروس اور ان کا جو جال دنیا میں پھیلا ہوا ہے, انہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مگر بات یہ جو اب ڈیولپ ہو رہی ہے, جیسے بھائی ہمارے دلی سے بالکل صحیح فرما رہے تھے, ہم یہاں پر یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً رپورٹ جو پتہ چلتی ہیں کہ 400 سے 500 اس وقت النصرہ کے ساتھ سیریا میں فائٹ کر رہے ہیں, جرمنی سے گئے ہوئے ہیں لوگ, فرانس سے گئے ہوئے ہیں, حتیٰ یہ کہ چھوٹا سا ملک بیلجیم وہاں سے بھی لوگ النصرہ کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں. اور کچھ مہینے پہلے یہاں پر لندن میں خود ایک واقعہ ہوا تھا جس کا یقینی طور پر آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر ایک سلفی گروپ ہے اور اس کا لیڈر جو انجم چودھری ہے, اس نے جو ہے ایج وے روڈ جو ہماری مین سڑک ہے جہاں پر کافی یعنی کہ عرب دکانیں ہیں اور دوسرے یعنی کہ سینٹر آف ٹاؤن میں وہاں پر ایک جو ہے جھگڑا فساد کیا تھا. تو یقین یہ دیکھنا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو فائٹرز ہیں سیریا میں اس وقت, جب وہ اپنے ملک واپس جائیں گے, اگر زندہ واپس جاتے ہیں, تو وہ یقینی طور پر نہ اکاؤنٹنٹ بنیں گے, نہ لائرز بنیں گے, نہ کسی آفس میں 9 to 5 جاب کریں گے. ان کا ذہن بنا ہوا ہوگا کہ دہشت گردی کرنا چاہیے اور کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اپنا پیغام, غلط پیغام جو ہے دنیا تک پہنچا جائے. تو وہ لوگ جب واپس آئیں گے لندن, پیرس, اور پچھلے 6 مہینے پہلے اگین لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک برٹش سولجر کا قتل کیا گیا تھا اور وہ جو دو نیو مسلمز تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ قتل اس بنا پر کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے مڈل ایسٹ میں مارے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی مینٹیلٹی جو پروموٹ کی جا رہی ہے میڈیا کے تھرو اور دو چینلز جن کا نام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, صفا ٹی وی اور الوصل ٹی وی, اس وقت اس طرح سے شدت سے عربی میں پروگرامز بنا رہے ہیں سلفی اور وہابی نظریات پیش کرتے ہوئے, جس کی بنا پر یقینی طور پر کچھ لوگوں پر ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے, جس کی بنا پر ہم یہ دہشت گردی جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جو پہنچ رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب, امریکہ اور یورپی ملکوں کے حکام نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ شام سے واپس آنے کے بعد مغربی ملکوں کے جنگجو جو القاعدہ سے وابستہ ہیں خود ان کے لیے مشکلات ایجاد کریں گے اور مغرب میں دہشت گردی پھیلا سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ خطرہ انہوں نے اس وقت کیوں نہیں محسوس کیا जब उन्हें शाम में भेजना और उनकी मदद करना उन्होंने शुरू की थी।
जी ये मैंने पहले भी हमारे भाई ने बात की वो मैंने सुनी थी। देखिए हम जरा अमेरिका को और यूरोपियन को जरूरत से ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं
जी,
और ये तासर भी शायद हम देना चाहते हैं कि वो कहीं गलती कर ही नहीं सकते
जी।
अब आप देखिए इन्होंने गलतियों पे गलती की, इन्होंने शाह ऑफ ईरान का पूरा साथ दिया और वो पता ही नहीं था कि ईरान के लोग क्या चाह रहे हैं
जी।
उसके बाद आगे आप आइए वियतनाम में इन्होंने टोटल मिसकैलकुलेट किया
जी,
इराक में इन्होंने टोटल मिसकैलकुलेट किया, प्लान बी ही कोई नहीं था, अफगानिस्तान में जिस बुरी तरह वो ये फंसे हुए हैं और वहां से भाग रहे हैं, असल में वहां पे कोई भी मसले को हल किए बगैर मिसकैलकुलेशन। तो इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है, सुपर ह्यूमन नहीं है कि ये इनको पता नहीं होता गलतियां करते हैं, ये बहुत सी गलतियां भी करते हैं
जी।
सिर्फ अपनी फौजी ताकत के ऊपर अपनी बात मनवाना तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे अकल का पता चले कि बहुत अकलमंद है। तो इन्होंने मिसट्रीट किया था और ये देखिए इस तरह नहीं हो सकता कि एक सदर अमरीका का और वो ओपनली और बिल्कुल खुल के कहे कि हम मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं, हम लेंगे और फिर उसके लिए लॉबिंग भी शुरू करते अपने अमेरिकन अवाम के अंदर भी जो उनके कांग्रेसमैन हैं उनके ऊपर भी और फिर यूरोपियंस के साथ और फिर अचानक छाप की तरह बैठ जाए, ये तो उसकी के लिए खिफत का बायस था बहुत बड़ा। तो इसी मिसकैलकुलेशन गलत इतलाएं दी जाती हैं, कहीं जगह पे ये घट भी देते हैं जिस तरह कह दिया कि मुस्लाना मुल्क जो है वो एटॉमिक वेपन बनाना चाहता है और फिर उस चीज को नुक्ते को आगे लेकर फिर सारा अपना जो वो उनकी कार्रवाई है या वो उनके जो वो स्ट्रेटजी है जो वो करना चाहते हैं उसको वो करते हैं, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, जाती ख्याल है कि इन्होंने शाम की सूरत हाल और मशरक वुस्ता की सूरत हाल है वो अमरीकनों उसको सही तरह नहीं समझ सकते। और ये बहरहाल हम एकेडमिक्स में तो कहते हैं कि अंग्रेज बेहतर समझता है इस इलाके को
जी,
जो फ्रेंच है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि वो यहाँ पे रहे हैं एक कॉलोनियल पावर की हैसियत से
जी।
लेकिन अमेरिका की इतनी सूझबूझ नहीं है इस इलाके पे, जो अंडरलाइन जो चल रही होती हैं लहरें या ख्यालात या लोगों के जो जज्बात हैं वो बहुत दफा मिसरीड कर जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि असल में सूरत हाल क्या है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो उनको सेटबैक हुआ है, ये मामूली चीज नहीं है कि एक पावर सुपर पावर अपने आप को कहती है और वो बिल्कुल उसको 180 डिग्री का टर्न लेना पड़े। तो इससे उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी इस खत्ते में बहुत कम हुई है। अब इस पर कौन यकीन करे और कौन इनकी बात को माने और कौन इनके साथ आगे लेके इनको चले। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप डिप्लोमेसी के हवाले से भी बात करें तो हम ये देखते हैं कि बहुत से मामलों में उन्होंने डिप्लोमेसी के मैदान में भी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जिस तरह के वो अपने आप को कहते हैं हम हैं। तो बहरहाल जो उसका नतीजा यही निकलता है कि जो शाम की सूरत हाल है उसको अब ठंडे दिल से देखना होगा इन सबको और फिर से उसको अपनी जो उनकी पॉलिसीज हैं जो उनका नुकसान नजर पहले था वो उसमें तब्दीली तो बहरहाल उनकी मजबूरी की वजह से आ चुकी है जो ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन इनको एक ऐसा फार्मूला देना होगा जिसमें वहां पे खून खराबा ना हो, वहां पे खून खराबा बंद हो। और शाम एक देखिए बहुत अहम मुल्क है, वो इसराइल का हमसाया भी है और एक अहम अरब मुल्क है और उसकी जो बका है और उसके जो अदारे जिस तरह तबाह हुए हैं उससे वो जितना कमजोर होगा वो तो इसराइल उससे फायदा उठाएंगे। इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि खित्ते के ममालिक को भी अब ये समझना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा मुल्क जो मुसलमान मुल्क है अरब मुल्क है जो अरब जिसे उनके हमसाए हैं उनको ये समझना चाहिए इसको हम बर्बाद ही कर रहे हैं, इसको हम आगे की तरफ चलें और अपनी हिकमत अमली में बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां लाएं और जो वहां की हुकूमत है उसको साथ लेके चलें और उसके साथ इस किस्म का फार्मूला बनाएं कि जिससे जो आगे के मामलात हैं वो चल सकें और बिल्कुल जो शिद्दत पसंद है उनको तो परे कर देना चाहिए। लेकिन जो जैनमन जो असल जो शामी है वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है उनको ही आगे करना चाहिए, उनके साथ ही कोई ना कोई इनको समझौता करना होगा और बशर असद की हुकूमत के साथ समझौता हो जाए, कोई ऐसा फार्मूला हो जाए जिसमें शाम बच जाए। और वो एक बहुत अहम मुल्क है, वो अहम मुल्क ही रहे खत्ते का।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक खजना साहब। इसी के साथ हम मोहम्मद अहमद काजमी और शब्बीर रिजवी साहब के भी शुक्रगुजार हैं, आपने तीनों तजिया निगारों की गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई। बहरहाल अमरीका और उसके मगरबी इत्तेहादियों को अपनी गलती और गलत अंदाज़ों का एहसास भी हो गया है, और इसी के साथ अब उन्हें इस बात का भी इदराक हो गया है कि जो गलती शाम के ताल्लुक से उनसे सरजद हुई है उसका खमियाजा भी उन्हें इस शक्ल में भुगतना पड़ सकता है कि उनके मुल्कों के जंगजू जो अलकायदा से वाबस्ता हैं, जो शाम गए हैं जंग के लिए, जब वो वापस आएंगे तो ख़ुद उनके लिए ये मुसीबत बन जाएंगे। और अब वो बहुत ज़्यादा इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि शाम का मसला पुरअम तौर पर हल किया जाए। हमारी भी आरज़ू यही है कि शाम का मसला शामियों की शिरकत से पुरअम तौर पर हल किया जाए, लेकिन ये बात शाम के पड़ोसी जो अरब ममालिक हैं, जो दीगर रजत पसंद हुकूमतें अब तक शाम के अंदर अमरीका की ईमा पर मुदाखलत करती रही हैं, वो भी ज़मीनी हकायक को समझें और वो भी इस बात को समझें कि जो आग उन्होंने शाम में भड़काई है या उसे भड़का रहे हैं वो उन्हें भी दामनगीर हो सकती है। बहरहाल शाम के बहरान के हवाले से खित्ते की रजत पसंद हुकूमतों के किरदार के बारे में इंशाअल्लाह हम फिर किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ अंदाज़े जहां अपने इख्तिताम को पहुंचता है, अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।